मेरे नौजवान अजीज साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 5 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का भी जिन्होंने अभी अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना दाखिला लिया है, एडमिशन लिया है। और मित्रों, इनके नाम हैं अंचल पाठक जो जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और प्रीति मिश्रा आप लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो अंचल और प्रीति, आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में हम एक बार फिर से बात करेंगे आर्थिक व्यवस्था पर, लेकिन सीधे आर्थिक व्यवस्था पर नहीं, आर्थिक व्यवस्था की समीक्षा पर आज हम बातें करेंगे। इसे हम अभी यहीं छोड़ते हैं, आइए कुछ दूसरी जो खबरें हैं उन पर बातें कर लेते हैं। एक न्यूज आपने सुनी होगी जो एक छोटा सा ही है, एक कंटेंट के रूप में है, जिसे आप तथ्य कह लीजिए, आपको चाहिए कि आप उसे नोट कर लें। और वह यह कि केंद्र सरकार ने जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें जो जल संसाधन बहुत है, वाटर रिसोर्सेज बहुत हैं, तो उन वाटर रिसोर्सेज का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, कैसे उनको मैनेज किया जाए, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है और जिसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी, जो अभी कुछ ही समय पहले ही उपाध्यक्ष बने हैं। याद रखिए कि जो नीति आयोग है ये योजना आयोग को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही ऐसा किया है। और जैसे कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक उसी पैटर्न पर अभी भी नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, जिस आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, आप कल्पना करके देखिए कि वह कितना महत्वपूर्ण आयोग, समिति या जो भी कह लीजिए संस्था होती होगी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि नीति आयोग अपने आप में ही कितना महत्वपूर्ण संस्थान है। और फिर उसके जो उपाध्यक्ष हैं, अगर हम ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर ले लें तो प्रधानमंत्री के बाद नेक्स्ट उपाध्यक्ष ही होंगे, राजीव कुमार जी हैं, उन्हें इसका हेड बनाया गया है। दोस्तों, जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए अगर आप चीजें ढूंढेंगे कि क्या क्या सरकार कर रही है, तो पाएंगे कि पिछले 2-3 साल में बहुत कदम उठाए गए हैं, काफी कदम उठाए गए हैं। और मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक ऐसा टॉपिक है ये जिसे हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि इसी साल अक्टूबर में जो मेंस के एग्जाम हो रहे हैं उसी के लिए उपयोगी है। मुझे तो लगता है कि ये लगातार एवरग्रीन टॉपिक है। बस आपको करना ये चाहिए कि एक बार पूर्वोत्तर भारत की स्थितियों का जायजा ले लें, कौन कौन से स्टेट हैं, किस किस तरह के रिसोर्सेज हैं, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, सरकार की कौन कौन सी पॉलिसीज नीतियां वहां चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और क्या किया जाना चाहिए। इतना तो आप जानते ही हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत है वो नेचुरल रिसोर्सेज का समृद्ध भंडार है, फॉरेस्ट आप देखिए, वातावरण आप देखिए, जल संसाधन देखिए, और भी जो दूसरी चीजें, वहां के लोग बड़े सीधे साधे और बड़े प्यारे लोग होते हैं, बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। संकट वहां जो है थोड़ा सा वो उग्र घटनाओं को लेकर के होता है, जैसे नागालैंडर उधर आप अक्सर सुनते रहते होंगे, उसने जरूर नॉर्थ ईस्ट के विकास को काफी नुकसान पहुंचाया है और लगातार उनकी कोशिश भी नुकसान पहुंचाने की होती है। तो ये टॉपिक आपको तैयार कर लेना चाहिए और फिर सरकार जो भी निर्णय लेती है, कदम उठाती है, योजनाएं लागू करती है, उनकी आप एक लिस्ट बनाते चले जाइए, तो मुझे लगता है कि आपका यह टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। और बकायदे इस टॉपिक को आपको तैयार रखना भी चाहिए। जो आयोग बनाया गया है मित्रों, वो जून 2018 तक अपनी रिपोर्ट दे देगा। मैं एक चीज इस सरकार में एक स्पेशली देख रहा हूं जो सच पूछे तो इससे पहले दिखाई नहीं पड़ती थी, वो ये कि सबके लिए समय निर्धारित कर दिया जाता है कि ये इस समय तक पूरा हो जाएगा। और देखिए, पहले भी मतलब जब प्लानिंग की जाती है तो ऑन पेपर तो ये होता ही है कि भाई ये इस समय तक इसे पूरा कर देना है, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता था, मतलब पब्लिक को इस तरीके से बताया नहीं जाता था कि ये इस समय तक हो जाएगा। और फिर क्या होता था, बढ़ता जा रहा है समय, बढ़ता जा रहा है समय, बढ़ता जा रहा है। तो अब मैं देख रहा हूं कि हर चीज के लिए ना एक समय निर्धारित कर दिया जाता है कि ये 4 साल में पूरा हो जाएगा, ये 3 साल में पूरा हो जाएगा, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसे आप एक अलग प्रशासन की जो बदली हुई व्यवस्था है या जो नई संस्कृति विकसित हो रही है उसके तौर पर इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, राइट। मित्रों, इसके बाद जो दूसरी खबर थी वो आप देख रहे हैं कि नोबेल प्राइज की घोषणा हो रही है, मेडिसिन में हो चुकी है, इसके बाद फिर आप फिजिक्स में भी देखा हो गई है, और अब केमिस्ट्री की भी घोषणा हो गई है। केमिस्ट्री में 3 देश के वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया है, जिसमें एक है स्विट्जरलैंड, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, और तीसरा है अमेरिका। 3 प्रोफेसर्स को मिले हैं। नाम आपको मित्रों मैं एक बार चलिए बता देता हूं, लेकिन हो सके तो याद कर लीजिएगा या ध्यान रख लीजिएगा। जैक्स डुबोचित, दूसरे हैं जोए चिम फ्रैंक, और तीसरे हैं रिचर्ड हेंडरसन। ये 3 वैज्ञानिक हैं, और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया है वो है क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विकसित करने के लिए। ये देखिए, मैं आपको अखबार में जो दिया हुआ है उसे ज्यों का त्यों सुना रहा हूं। मुझे इसके बारे में स्वीकार करता हूं कि कुछ नहीं मालूम है, आप लोग थोड़ा सा किसी और से पूछ लीजिएगा, मैं भी इसे पूछने और समझने की कोशिश करूंगा कि ये क्या होता है। अखबार में फिर ये लिखा है कि जो इन्होंने रिसर्च की है, अब उस रिसर्च के माध्यम से जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाए जा सकेंगे, और तब फिर जो हमारी लाइफ केमिस्ट्री है उसमें इससे बहुत मदद मिलेगी, और दवाइयों के विकास में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो मित्रों, जो कुछ भी अखबार से मैं थोड़ा सा जान समझ सका हूं वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है। मित्रों, इसके बाद एक जो खबर थी अलग से, मैं इसे लेकर के चल रहा हूं, हालांकि ये भी अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी हुई खबर है, और वो ये है कि हमारे वित्त मंत्री जिन्हें जैसे कहा कि भारत धीरे धीरे नकदी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, और इसे दुनिया स्वीकार भी कर रही है और इसकी प्रशंसा भी कर रही है। नकदी व्यवस्था से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है। नकदी व्यवस्था और डिजिटलीकरण के लिए बढ़ रहा है की ओर बढ़ रहा है, तो इसमें तारीफ की क्या बात है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, हालांकि बहुत ही बेसिक है और आप जानते भी होंगे। देखिए, नकदी व्यवस्था वो होती है जहां हम सारा काम लेन देन कैश में करते हैं। हम किराना दुकान में जाते हैं, होटल में जाते हैं, छोटे मोटे पान ठेले पर जाते हैं, तो अपने पॉकेट पर्स से पैसे निकाले और उसे दे दिए, ये नकदी व्यवस्था है, राइट। दूसरी व्यवस्था डिजिटलीकरण है, जिसमें हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट दे रहे हैं, आजकल पेटीएम वगैरह के बहुत से हो गए हैं, वॉलेट से इस तरीके से हम पेमेंट दे रहे हैं, मतलब कैश में नहीं दे रहे हैं, वो पेमेंट सीधे सीधे ट्रांसफर बैंक से एक अकाउंट से आपके अकाउंट में हो जा रहा है। मुझे आपको पेमेंट देना है, मैंने अपना बैंक अकाउंट से ही आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, न तो मैंने आपको कैश दिया न आपको वह कैश मिला, लेकिन वो पैसा मेरे पास से चला गया, आपके पास आ गया। ये प्रक्रिया है, आपने कौन बनेगा करोड़पति में भी देखा होगा कि अमिताभ बच्चन जी लास्ट में यही कहते हैं कि ये आपके अकाउंट में तुरंत चला गया, और फिर 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सस्ता है, ये बहुत सुरक्षित है, और ये बहुत आसान है, 3 चीजें बताते हैं। तो मित्रों, इससे होता क्या है? देखिए, होता यह है कि जब मैं नकदी लेन देन करता हूं, मैंने तो अभी छोटे छोटे लेन देन की बात कही, लोग बहुत बड़े बड़े लेन देन भी नकदी कर सकते हैं, लाखों का लेन देन भी नकद हो सकता है, तो वो जो पैसा है वो रिकॉर्ड में नहीं होता, लिखित रूप में होता नहीं है, तो हो सकता है कि वो ब्लैक मनी हो, वो काउंटेड मनी नहीं है। काउंटेड मेरे पास वो वैध मनी ही है, मतलब मेरे पास ब्लैक मनी है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, लेकिन चूंकि वो काउंटेड नहीं है तो उसका उस तरीके से लेखा जोखा सरकार के पास नहीं हो पाता। तो जिनके पास देखिए केवल वैध मनी है वो तो फिर ज्यादा मायने उनके लिए नहीं रखता है, लेकिन जो अवैध मनी जिनके पास है, जिसे हम ब्लैक मनी कहते हैं, अगर वो भी डिजिटलीकरण से लेन देन करने लगे तो बट नेचुरली कि अब उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपके पास इतना पैसा आया कहां से, तो बकायदे अपने खाते बही में दिखाएंगे, उस पर वो टैक्सेस देंगे, इनकम टैक्स देंगे, तो ये इसको आप कह लीजिए कि काउंटेड मनी हो जाएगा, मतलब जिसका लेखा जोखा है। तो जिस समाज में डिजिटलीकरण ज्यादा होगा, यानी कि ब्लैक मनी कम होगा, पैसे का लेखा जोखा होगा, बट नेचुरल है कि वहां सरकार को टैक्स ज्यादा मिलेगा, नंबर एक, तो सरकार उसका इस्तेमाल व्यवस्था के लिए कर सकेगी। दूसरा उसमें यह होगा मित्रों कि जो ब्लैक मनी होती है, जो वो ब्लैक मनी सच पूछे तो सरकार की जितनी भी आर्थिक नीतियां होती हैं उन पॉलिसीज को पैरेलल इकोनॉमी के रूप में डेवलप होकर के उसे बेकार कर देती है, नलीफाई कर देती है। सरकार सोचती कुछ है हो कुछ जाता है, क्योंकि ये ब्लैक मनी बीच में आकर के उसमें हस्तक्षेप कर देती है। तो इससे फिर सरकार जो नीतियां बनाती है बड़ी ठोस तरीके से काम करने की उनकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसीलिए मित्रों, अगर नकदी व्यवस्था के की जगह पर अगर हम डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये मान के चले कि बहुत अच्छे संकेत हैं भविष्य की एक ठोस और अच्छी अर्थव्यवस्था के लिए। मित्रों, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर। देखिए, मुख्य विषय का जो टाइटल होगा हम दे सकते हैं आर्थिक व्यवस्था की समीक्षा। चलिए हम अभी वर्तमान की अर्थव्यवस्था को लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिनों पहले मैंने आर्थिक व्यवस्था की समीक्षा के दौरान ही आपको कुछ बिंदु बताए थे, और वो अर्थशास्त्रियों के द्वारा ही उठाए गए सवाल थे, कि जिससे उन्होंने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो वृद्धि दर है वो रुक गई है, डाउन ट्रेंड में चली गई है और बहुत खराब है और खराब होने की आशंका है, राइट? वो एक पक्ष था। अगर कल आपने एक लाइव टेलीकास्ट सुना हो प्रधानमंत्री जी का, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके गोल्डन जुबली में प्रधानमंत्री जी गए थे और उन्होंने अपना एक भाषण दिया है और उसका लाइव टेलीकास्ट भी हुआ है, मैंने वो पूरा भाषण सुना। उस भाषण के केंद्र में उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि जो लोग इस ये अफवाह फैला रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, दरअसल ऐसी स्थिति है नहीं, राइट? और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया बताया, तो जनरली दिमाग में क्या होता है कि भाई ये तो राजनेताओं के द्वारा दिया गया भाषण है और चूंकि वो प्रधानमंत्री हैं तो वो अपने पक्ष को तो रखेंगे ही, सपोर्ट करेंगे अपने को, अपनी गलती क्यों स्वीकार करेंगे या खामियों को लिपापोती करने की कोशिश करेंगे। कुछ सीमा तक राजनेताओं के साथ ये सही भी है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहां यह है, प्रश्न कह लीजिए, कि जो बात कही गई है वो किस तरीके से कही गई है। देखिए, यहां आप हटा दीजिए, यहां प्रधानमंत्री जी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ इस तरह के मेल मेरे पास आ जाते हैं। मैं आपको केवल एक सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करने के नजरिए की बात कर रहा हूं, बस दैट्स ऑल। तो प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी बात रखी वो आंकड़ों के माध्यम से रखी, अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के विकास हुए हैं, मोटरसाइकिल के सेल में कितनी वृद्धि हुई, एयर में कितनी वृद्धि हुई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना आया, एयर ट्रैफिक कितना बढ़ा, इस तरीके से करके उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, राइट? अब ये आर्थिक आंकड़े हैं, राइट? अब वो अपने पक्ष को बिल्कुल प्रामाणिक तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी चीज यही होती है, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग में भी सबसे बड़ी यही चीज होती है कि आप अपनी बात को कितने विश्वसनीय तरीके से तार्किक आधार पर रख पा रहे हैं। केवल कहा नहीं जा रहा है कि नहीं नहीं बात जो दूसरे लोग हैं वो अफवाह फैला रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, नॉट एट ऑल। उन्होंने बकायदे आंकड़े दिए, और एक बात जो उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कही कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौर में पिछले 3 सालों में महंगाई दर काफी नियंत्रण में रही है। तो अब आपको केवल ये देखना है कि भाई अगर महंगाई दर नियंत्रण में रही है, यानी कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो अगर आर्थिक वृद्धि दर थोड़ी सी कम भी हुई है, जो हुई है उन्होंने स्वीकार भी किया, 5.7% कुछ हो गया है, तो उसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट? फिर आपको ये देखना है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि कार की बिक्री बढ़ी है, कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है, मोटरसाइकिल की बिक्री बढ़ी है, चलिए ये चीजें हैं, तो अब आप समीक्षा कैसे करेंगे? मैं समीक्षा की बात बता रहा हूं। तो चलिए, इनकी बिक्री बढ़ी है, इसका मतलब है कि लोग खरीदना चाह रहे हैं, लोगों के पास पैसा है, तभी तो वो इन चीजों को खरीदेंगे। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी में जो अखबारों में पढ़ने में आ रहा है वो इस तरह की चीजें शो कर रहे हैं कि जो लघु उद्योग हैं, जो मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, उनका व्यापार बहुत कम हो गया है, बिजनेस बहुत कम हो गया है, वो अपने यहां के लोगों को निकाल रहे हैं, जो उनके यहां काम करने वाले लोग हैं निकाल रहे हैं, तो बेरोजगारी बहुत तेजी से फैल रही है, बाजार सूने पड़ गए हैं। जब लोगों से व्यक्तिगत तौर पर भी बात होती है तो वो ये बात कहते हैं कि बहुत से लोग कारीगर जो बड़े बड़े शहरों में काम कर रहे थे, अब उनको निकाल दिया गया है, तो अपने गांव लौट गए हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। तो फिर अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो फिर ये बेरोजगारी क्यों आ रही है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अपर क्लास मिडिल लेवल और अपर मिडिल लेवल, उनकी कमाई तो हो रही है लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। तो मित्रों, ये जो आंकड़े होते हैं, याद रखिए कि देखिए, जो ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, वो भी आंकड़ों का ही प्रयोग कर रहे हैं, अपने ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, अपनी सुविधा से आंकड़े ले रहे हैं। जो ये सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं, अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो रही है, वो भी आंकड़ों से ही अपनी बात कह रहे हैं, अपनी सुविधा से आंकड़े ले रहे हैं। और इसके बाद फिर उनका इंटरप्रिटेशन जो होता है, दोनों पक्ष के लिए है, जो इंटरप्रिटेशन है वो हम अपने ढंग से करते हैं। तो जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन होती है मित्रों, वो देखिए इसी रूप में होती है, इसी रूप में होती है कि आप दोनों तरफ की बात सुनते हैं, दोनों तरफ की चीजों को लेते हैं, और उन चीजों को लेने के बाद उनको अपने ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, उनकी व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। और वो व्याख्या करने की क्षमता आप में तब आएगी जब आपको उस विषय की बेसिक जानकारी हो, क्योंकि बिना मूलभूत जानकारी के फिर आप उनके बारे में कुछ नहीं लिख सकेंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मूलभूत जानकारियां होती हैं, ये बड़ी आसान होती हैं, बहुत सरल होती हैं, बहुत उलझी भी नहीं होती, बहुत आसान होती हैं। और जनरल स्टडीज के तहत तो वैसे ही वो आसान पक्षों को ही लिया जाता है, आपसे कोई इकोनॉमिस्ट की तरह के उत्तर की अपेक्षा नहीं करेंगे वो, लेकिन ये तो अपेक्षा करेंगे कि आप अगर देश के इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हैं तो कम से कम ये बेसिक जानकारी तो आपको हो। और मुझे मित्रों ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, आत्मसंतोष का अनुभव होता है कि 15 दिन की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट्स की इसी तरह की बेसिक जानकारियां देने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट के दिमाग में वो चीज समझ में आ जाए कि ये विषय क्या होता है और कैसे हम इस विषय पर आधारित जब प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो प्री में या मेंस में, तो हम उत्तर देने के लायक अपने आप को बना लेंगे। और ये मित्रों सिविल सर्विस की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका भी है। तो मित्रों ये मैंने कुछ बातें इसको आधार लेकर के कही हैं। जैसे अब एक और स्टेटमेंट है, अखबार में ही स्टेटमेंट है, कल के हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर का स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ये है कि सरकार ने कहा है कि वो राहत पैकेज लाएगी, राहत देगी, मतलब कुछ पैसा देगी, मतलब मार्केट में कुछ पैसा आएगा। तो रिजर्व बैंक ने सतर्क कहा है कि सरकार को राहत पैकेज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ जाएगी और दूसरा राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा, तो फिर अर्थव्यवस्था इससे कोई बेहतर नहीं होगी। अब देखिए सरकार कह रही कि अर्थव्यवस्था बेहतर करने के लिए वो राहत पैकेज देगी, बेहतर करने के लिए, और एक जो अर्थशास्त्री है गवर्नर हमारे रिजर्व बैंक के, वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर वो राहत पैकेज देगी तो इससे महंगाई बढ़ जाएगी और राजकोषीय घाटा भी बढ़ जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं ना, एक ही निर्णय है और उसके बारे में दो टॉप मोस्ट लेवल के लोग अलग अलग विचार रख रहे हैं। यही तो ब्यूटी है, यही तो एकेडमिक डिस्कशन है, यही बौद्धिकता है। फिर अब इस पर बहस होगी और फिर बहस के दौरान कोई सही निष्कर्ष निकल पाएगा। तो मित्रों ये बात आप अपने दिमाग में रखिए कि जब तक दोनों पक्षों को लेकर के आप एनालिसिस करने की स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक कम से कम आर्थिक क्षेत्र के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सटीक उत्तर देना, अच्छे उत्तर देना संभव नहीं हो पाता है, जो आपको बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में दिला सके। तो दोस्तों आज के इस न्यूज एनालिसिस में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सब आप लोग देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: अरुण कुमार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, महेश तिवारी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, अरविंद कुमार मिश्रा आप भी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं, अभिषेक गुप्ता, रिंकू शर्मा, संजय गौतम, सागर पंसारी, चमकौर सिंह बाधेवालिया मोगा पंजाब से हैं, ध्रुव उपाध्याय, दीपशिखा चौहान, आकर्ष मिश्रा सागर मध्य प्रदेश से, और आदित्य चिश्ती क्वाद्री न्यू दिल्ली से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।